मार दिया है। उन्होंने एक वीडियो रिलीज की है उन बॉडीज की जो कि वहां पे कुलगान बॉर्डर एरिया में, इन सारावान के एरिया में जो हैं वो बिखरी पड़ी हुई थी। उसमें उन्होंने कहा जी कि इरानियन मिलिट्री फोर्सेस ने इनको एम्बुश किया और इनके ऊपर गोलियां चलाई और इनको मारा। उन्होंने कहा जी तकरीबन 300 अफगान्स जो हैं वो ईरान के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। इस 300 में से हार्डली 60-70 सर्वाइव किए जा चुके हैं, उसमें से बहुत सारे जो हैं वो जख्मी हैं और बाकियों को मार दिया है। जबीउल्लाह मुजाहिद जो कि इंटरिम अफगान गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक्स के ऊपर कहा कि हम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और अब ये सारी चीज क्लैरिफाई हो गई और अब हम इसके ऊपर नेसेसरी डिसीजन लेंगे। भाईजान, हर किसी का दिल पाकिस्तान जितना बड़ा नहीं होता। आप किसी के मुल्क में घुसने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको मारेंगे ही। तो ये पाकिस्तान ही था जिसने आपको खुले आर्म्स और दिल से अपने मुल्क में बुलाया और फिर अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करवाया आपके पीछे। आज आप उस मुल्क में टेररिज्म कर रहे हैं, हमारे ही बच्चों को मार रहे हैं, हमारे फौजियों को मार रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारे सिविलियंस को मार रहे हैं और आप किसी तरह से शांति से ना खुद चैन कर रहे हैं ना पाकिस्तान को चैन करने दे रहे हैं। तो दुनिया का और कोई मुल्क आपको ये टेररिज्म नहीं करने देगा मिस्टर अफगानिस्तान। तो ये हमारा ही बड़ा दिल था कि हमने कहा जी हमारे अफगान भाई और हमने आपको बड़ा दिल दिखाया तो उसका भी आप बेड़ा गर्क कर रहे हो। कोई और मुल्क अपना बेड़ा गर्क आपके हाथों नहीं करवाएगा। तो ये है जनाब। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय मेडोवेल इस्लामिक सेंटर। जनाब, मेडोवेल इस्लामिक सेंटर का आने वाला है टेलीथॉन हमारे साथ ऑन फ्राइडे 18 अक्टूबर 3:30 के ऊपर। तो प्लीज आप दिल खोल के अपने जो भी कोई आपके सदका ज़कात आप देना चाहते हैं आप डोनेट करें प्लीज। और आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी वेबसाइट पे www.michi.org पे जाके इनको विजिट कर सकते हैं और आप स्टूडियो में हमें कॉल कर सकते हैं उस दिन एट 416-620-1778। इसके अलावा डेंटिस्ट्री और मिसेस आगा नाजिया रहमान साहिबा जो होती हैं डॉक्टर वो हैं यहां पे 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट यूनिट E104 ब्रैम्पटन में। अगर आपको दांतों से रिलेटेड कोई भी सुविधाएं चाहिए हैं तो आप इनसे जरूर मिले। इनका नंबर है 9058721100 एंड ओपन माइक कफे। कहते हैं जी बड़े जबरदस्त डिलीशियस खाने होते हैं तो आप जाएं और एंजॉय का मजा लें। और इनका नंबर है 416-526-6800।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आज चूंकि SEO की मीटिंग जो है आज वैसे खत्म हो गई है, लेकिन कल अपने ओपनिंग रिमार्क्स में उन्होंने कहा जी कि हमको रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। SEO की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग से इस्लामाबाद में एट जिना कन्वेंशन सेंटर में ये खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि SEO का प्लेटफॉर्म बहुत ही एस्टीम्ड प्लेटफॉर्म है और ये एक बीकन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म है। मैं बिल्कुल ये बिलीव करता हूं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि ये हम अपने फ्यूचर को प्रॉस्परस बना सकते हैं। हमको अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए काम करना पड़ेगा और एक इंक्लूसिव रिफ्लेक्टिव शेयर्ड एस्पिरेशन पे जो हम जो काम करेंगे तो हमारी मेंबर स्टेट्स जो हैं वो सक्सेस उनको मिलेगा। रीजनल पावर्स जो हैं उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि हमारे लिए बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है और हम बिल्कुल रीशेप कर सकते हैं ग्लोबल सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स सोशल सिक्योरिटी लैंडस्केप को। अफगानिस्तान के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान जो है आपको बड़ा इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड ट्रांजिट देता है और SEO की स्टेट्स को अफगानिस्तान की तरफ देखना चाहिए और ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए कि हम अफगानिस्तान को भी जो है ये अपॉर्चुनिटीज ऑफर करें प्रॉस्पेरिटी की और आगे बढ़ने की और हम जो है हम सबको इस जगह पे मिलजुल के काम करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है उनके लिए हम एक अपनी प्रॉस्परस स्टेट्स जो है वो छोड़ के जा सकें। जाहिर है कि SEO की मीटिंग में जिसमें कि तकरीबन नहीं बल्कि सब ही लोग किसी न किसी कैपेसिटी से कंट्रीज जो है अपने रिप्रेजेंट यहां पर करें या प्राइम मिनिस्टर्स हैं या उनके फॉरन मिनिस्टर्स हैं या कि उनके फॉरन सेक्रेटरीज हैं आए हुए हैं यहां पर। तो इसमें पाकिस्तान को जो है काफी ज्यादा दुनिया में अच्छी निगाह से देखा जा रहा है एंड थैंक गॉड जो पाकिस्तान का इमेज भी यह है कि बिल्कुल नीट क्लीन कंट्री है नंबर वन। नंबर टू ये कि बिल्कुल सिक्योरिटी ऐसा भी कुछ नहीं है, कहीं पे वंस इन अ वाइल इधर उधर कुछ टेररिस्ट अटैक होते हैं बट अदरवाइज पाकिस्तान इज अ सेफ प्लेस। अगर सारे हेड्स ऑफ द स्टेट वहां जा सकते हैं और आपको पता ही है कि इंग्लैंड की टीम भी आई हुई है आजकल, तो जो लोगों के बहाने हैं कुछ लोगों के कि ओ पाकिस्तान बड़ी खतरनाक जगह है, वो सिर्फ बहाने हैं। अच्छा जनाब, ये अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये स्पीच की तो उसके साथ साथ लोगों ने पूछा कि भाई एस जयशंकर साहब आए हुए थे तो अब उनका क्या स्टेटस है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये अब पता चला है कि इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब थे, उन्होंने भी आज वो चले गए हैं 23rd एसईओ मीटिंग अटेंड करके, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने थैंक यू किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरन मिनिस्टर इज़हाक डार साहब को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी जो थी वो बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। आपको पता ही है कि ही वॉज द फर्स्ट फॉरन मिनिस्टर इन अ डेकेड टू कम टू पाकिस्तान। उन्होंने अपने टू डे हडल की डिटेल्स देते हुए एक्स के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद से जा रहा हूं और मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इन्होंने मुझे बहुत हॉस्पिटैलिटी और कर्टसीज शो की। उसके फिर रिप्लाई में डार साहब ने भी एक्स पे उनको कहा कि आपके काइंड मैसेजेस और पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत खुशी हुई आपको यहां पे होस्ट करके। डार और जयशंकर साहब के बारे में यह भी कहा जा रहा है, हालांकि जो है वो दोनों तरफ से कहा गया था कि बायलैटरल टॉक्स नहीं होंगी, लेकिन फिर भी डिटेल्स हैं कि ये लोग कुछ देर लंच के ऊपर एक दूसरे से उन्होंने बातचीत की और कुछ आइडियाज एक्सचेंज किए, लेकिन उसकी डिटेल्स जो है मीडिया को रिवील नहीं की गई है। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तारण ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि यह आइस ब्रेकर था और हम में से किसी ने भी, ना इंडिया ने ना पाकिस्तान ने, बायलैटरल मीटिंग के लिए कहा ही नहीं था, लेकिन लीडर्स का एक दूसरे को वेलकम करना, हैंडशेक करना, ये जो है ग्लोबली एक पॉजिटिव इमेज जाता है और दिस विल गो अ लॉन्ग वे। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने भी फिर कहा कि चूंकि अब जबकि ये इधर आए हैं और जैसे कि अभी तारर साहब ने भी कहा कि जी आइस ब्रेकर के तौर पे है, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बहुत कम दिनों में आप एक अच्छी न्यूज सुनेंगे कि जब हमारे इनके साथ ट्रेड और दूसरे टाइज भी होंगे और मोदी जी को भी हम इनवाइट करेंगे। इसी के ऊपर जनाब बात करते हुए बीबी जरदारी जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर पाकिस्तान कि इतनी बड़ी एससीओ की मीटिंग जो है हमने यहां पर ऑर्गेनाइज की है। वो कहते हैं जब मैं पाकिस्तान का फॉरन मिनिस्टर था तो मैं भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था और इंटरेस्टेड था और हमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया था कि हम ये मीटिंग अपने मुल्क में करा सकें। मैं जो था जब फॉरन मिनिस्टर था तो मैं इंडिया गया था इसको जो है अटेंड करने के लिए और जो है हम ने कहा था कि हम जो है मिलके एसईओ के प्लेटफॉर्म पे अब काम करेंगे। जब उसे पूछा गया कि आप अगर एसईओ के प्लेटफॉर्म पे मिलके काम करना चाहते हैं तो आपकी इंडिया के साथ अब क्या टाइज जो है वो हैं, उन्होंने कहा जी कि बायलैटरल टाइज जो है एसईओ के रेगुलेशन है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सुनने की जरूरत है क्योंकि लोगों ने आज बहुत एतराज किया, ओ जी एसईओ की मीटिंग थी ऐसी जयशंकर तुम कर लेंगे गल तुहानू की तकलीफ सी। ये आज बीबी जरदारी ने क्लियर किया, उन्होंने कहा एससीओ के जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक आप बायलैटरल इश्यूज के ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं। यहां पे जो डेलीगेट्स आते हैं वो सिर्फ रीजनल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, तो इसलिए ना तो इंडिया ना तो पाकिस्तान जो है बायलैटरल टाइज पे बात कर सकता था, लेकिन जाहिर है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में रابطे होने चाहिए, लेकिन हमारे फुल जो रابطे होंगे इंडिया के साथ उसी वक्त तक होंगे जिस वक्त ये जो उन्होंने रिवोक किया था आर्टिकल 317 2019 जम्मू एंड कश्मीर के लिए, उसको जब तक ये खत्म वापस नहीं करके उसकी पहली वाली पोजीशन नहीं लाएंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं चलेंगे। इसके अलावा जो कनाडा इंडिया की रो थी उसके ऊपर जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि कनाडा के ऊपर ने बहुत सीरियस एलिगेशन जो हैं वो इंडिया के ऊपर लगाए हैं और उनके गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर डायरेक्टली उनके नाम लेके लगाए हैं, तो इंडिया को इसको जरा सीरियसली लेना चाहिए, जो कि सारी दुनिया कह रही है। वैसे बात यही है, पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं जी मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने कहा जी कि अथॉरिटीज क्रैक डाउन करेंगी उन तमाम लोगों के खिलाफ जो कि झूठी रिपोर्ट्स जो हैं एक लड़की के झूठे अलेज्ड रेप के ऊपर इन प्राइवेट कॉलेज इन लाहौर जो है वो फैला रहे हैं। आपको पता ही है कि पंजाब में बहुत दिनों से स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट स्टेज कर रहे हैं और दूसरे भी सिटीज में कंट्री के कर रहे हैं और वो कहते हैं जी कि ये कल्प्रिट्स जिन्होंने रेप किया है लड़की को अलेज्डली, उसको पकड़ा जाए और उसको सजा दी जाए। ये प्रोटेस्ट जो है इसके अंदर बहुत सारे पुलिस वाले और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जख्मी हुए हैं, लेकिन अथॉरिटीज जो हैं वो फर्मली कह रही हैं कि जी लड़की को रेप नहीं किया गया है। इसके साथ साथ लड़की की जो फैमिली है उसने भी कहा है कि लड़की के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। आज मरियम साहबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने कहा जी कि रिगार्डलेस कोई पीटीआई का है, कोई चौधरी परवेज लाई का रिश्तेदार है, कोई क्यू लीग से है, जो जिस भी है, अगर वो जो है पंजाब के अंदर एनआरकी फैला रहे हैं, उन सब के अंदर जो है उन सब के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये फेक न्यूज फैला रहे हैं, ये पंजाब के इमेज को खराब करना चाहते हैं, यहां की डेवलपमेंट को खराब करना चाहते हैं, और ये पूरी कैंपेन है जो कि रन की जा रही है ताकि मिसलीड किया जाए स्टूडेंट्स को और झूठ फैलाया जाए ताकि पंजाब के अंदर एक केओस पैदा किया जाए। ये इनका बड़ा ही खतरनाक प्लान है। नाम न लेते हुए उन्होंने कहा जी कि ऐसे ही नहीं है कि मैं इस पार्टी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलती हूं और ये जो है इस पंजाब के अंदर जो है खराबी पैदा कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि एक हाई लेवल कमेटी जो कि गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें यह कहा गया बड़ा क्लियरली कि लड़की को रेप नहीं किया गया था। हां, उसको इंजरीज आई थी लेकिन वो इंजरीज उसको घर में आई थी, कॉलेज में नहीं आई थी। पुलिस ने फौरन एफआईआर लिखी थी और यह एफआईआर लिखी गई थी एट डिफेंस ए पुलिस स्टेशन पे, लेकिन कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और अनवेरीफाइड जो खबरें फैला रहे हैं उसके खिलाफ अब पुलिस जो है क्रैकडाउन करेगी। हिंदुस्तान के अंदर आज कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई और वो ये था कि जनाब जम्मू एंड कश्मीर जो कैबिनेट है उसको फॉर्म किया गया है और उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं ही स्वॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके ऊपर जो कांग्रेस है उसने कहा कि हम कैबिनेट के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं चाहते हैं। ये जो इनकी ओथ टेकिंग थी इसके अंदर इंडिया ब्लॉक के बहुत सारे एलायस जैसे कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, कैनी मोजी, सुप्रिया सूले, प्रकाश करात, ये सब लोग आए हुए थे और कांग्रेस जो है वो असल में बीजेपी के को कोई मौका नहीं देना चाहती कि जी ये फेल हो गए हैं। वो कहते हैं जिस वक्त तक आर्टिकल 370 रिस्टोर नहीं होगा हम लेजिस्लेशन में नहीं बैठेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने कॉन्स्टेंटली कहा है कि जी हम जब तक ये जो रिवोक किया गया था आर्टिकल 370 इसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब ने यह भी कहा था कुछ दिन पहले जो हमने आपको बताया था, जब तक मोदी जी और बीजेपी रहेंगे ये पॉसिबल नहीं रहेगा, इसीलिए कांग्रेस जो है जरा पीछे रह रही है। नेशनल कांग्रेस ने कहा है जी कि हम तो अब गवर्नमेंट इसलिए भी बनाएंगे क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ 46 हो गई है इन 90 मेंबर असेंबली में, इसमें एक आम आदमी का एमएलए है और चार इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जो हमारे साथ आके मिल गए हैं। कांग्रेस कमेटी के जो चीफ हैं यहां पे जम्मू एंड कश्मीर के हमीद खरा, उन्होंने कहा जी कि मोदी जी ने तो टाइम एंड अगेन पब्लिक मीटिंग्स में ये प्रॉमिस किया है कि वो स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस इस चीज से बहुत ज्यादा नाखुश है और इसीलिए मिनिस्ट्रीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। इसके ऊपर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा जी कि हां बिल्कुल ये कांग्रेस को खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, हम कॉन्स्टेंटली उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन हमारे अपर हाउस के अंदर क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी नहीं है तो इसलिए गवर्नमेंट का साइज जो है बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है जिसकी वजह से हम जोर से बात नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमारी बातचीत जारी रहेगी उनके साथ भी मेरी टीम के साथ भी, तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इसके साथ साथ इंडिया के जो चेन्नई में तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि बेतहाशा बारिशों की वजह से बेतहाशा जो है वो फ्लड्स आए हुए हैं यहां पे और मूनसून जो है विद अ बैंग इट हैज कम इन इंडिया। हंड्रेड्स जो है वो स्ट्रैंडेड हैं मेजर सिटीज के अंदर और यहां तक के जो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं साउथ के रजनीकांत, उनका जो चेन्नई के अंदर बहुत ही पॉश किस्म का विला है गार्डन एरियाज में वो भी फ्लडेड है। और इसके अलावा बेंगलुरु का जो मयंता टेक पार्क है जो कि जिसके के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो हैं उनके ऑफिसेज हैं वो सब सबमर्ज्ड हैं। बेतहाशा बारिश की वजह से तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटका जो हैं उनको 7 डेज के लिए कहा गया है कि भाई सावधान रहो, ट्रेनें जो हैं बेतहाशा कैंसिल की गई हैं। 8 तो एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई सेंट्रल जो स्टेशन पे थी वो नहीं चल सकी बिकॉज ऑफ फ्लडिंग बिटवीन बेसन ब्रिज वासपडी स्टेशन में। 12 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, 23 को डिले किया गया है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा अथॉरिटीज ने बहुत सारे कंपनीज को कहा कि भाई अपने एम्प्लॉयज को एडवाइस मत करो ऑफिस आने के लिए, उनको बोलो घर से काम करें। कर्नाटका के अंदर भी कंपनीज को एडवाइस किया गया है कि भाई आप घर से काम करो क्योंकि बेतहाशा ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस बेंगलुरु, चेन्नई, चेंगलपट्टू, कंचीपुरम, तिरुवलुम के अंदर क्लोज आज रहे। स्कूल जो है वो आंध्रा के अंदर भी क्लोज रहे। वेदर कास्ट जो है वो अभी 19 अक्टूबर तक बेतहाशा बुरी कही जा रही है और मेट ऑफिस ने कहा है कि बेतहाशा थंडर स्टॉर्म्स आएंगे इसीलिए उसको रेड थंडर स्टॉर्म वार्निंग कहा जा रहा है। और जो ड्रेनेज सिस्टम है इन इलाकों के अंदर वो पूरी तरह चौक हो चुके हैं और उबल उबल के जो है वो सारे हाय ड्रेन्स बाहर आ रहे हैं, तो कराची का समा दे रहे हैं ये तो है जी। इंडिया कितना इम्प्रेस हो गया कराची से देख लो आप है जी। ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है ना जी। तो जब ज्यादा पानी आता है तो फिर ड्रेनेज सिस्टम तो खराब होएगा ना।
इतना भी पानी नहीं आता शाहजी जी कराची में जो आप कह रहे हैं कि बह जाता है, तो कोई पानी वानी नहीं आता।
नहीं है बट ठीक है,
ये आपके टोरंटो में इतनी बारिश हो जाती है,
2 इंच बारिश होती है तो
फ्लडिंग आ जाती है।
बर्लिंगटन क्या, हमारे ऑफिस के बाहर भी सारा इलाका बंद हुआ था, सारा इलाका बंद था।
कोई कराची में कोई बारिश नहीं होती और पानी नहीं आता, बारिश के आगे पानी नहीं आता।
ज्यादा बारिश आती है तो लेकिन ज्यादा
पानी
आता
नहीं आता।
अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा जनाब, सलमान खान की फैमिली के लिए बड़ा ही कड़ा वक्त है ये, क्योंकि आपको पता ही है कि अब वो जो लॉरेंस बिश्नोई है वो पीछे लग गया है। आज अरबाज खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उसने कहा जी कि मेरी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा टफ टाइम आ गया है, खासतौर पे जब से मर्डर हुआ है। ये जो पॉलिटिशियन थे जो कि हमारे बड़े फैमिली फ्रेंड थे, बाबा सिद्दीक, उसके बाद क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि जो जो सलमान खान का दोस्त होएगा उसको भी हम मारेंगे, तो उसको तो मार दिया है। अब हम सलमान खान की जो सेफ्टी है उसके लिए बड़े हम जो है परेशान है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने आपको पता ही है कि फायरिंग की थी सलमान खान का जो रेजिडेंस है अर्लियर दिस ईयर उसमें भी, और उन्होंने कहा जी कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं कह सकता कि व्हाट इज राइट विद माई फैमिली, नथिंग इज राइट विद माई फैमिली एट द मोमेंट, हर कोई बड़ा वरिड है। और वो कहते हैं जी लेकिन मैं क्या करूं, मुझे घर से निकलना ही पड़ेगा, मुझे अपनी ये जो अपकमिंग मूवी है उसको प्रमोट करना है, बंदा सिंह चौधरी, और ये 25 अक्टूबर को रिलीज हो रही है तो उसके प्रमोशंस में मुझे पार्टिसिपेट करना ही है, लेकिन अब आगे क्या होएगा हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सलमान को गार्ड करने की। लेकिन सलमान भी जो है ना वो दबंग है ना, वो कहता है जब मौत आनी है तो आएगी, तो वो भी जो है कोई एहतियात नहीं कर रहा और बाहर जा रहा है और शूटिंग्स कर रहा है। तो बहरहाल वो कहते हैं जी कि ये बड़ा खतरनाक वक्त है। अच्छा जनाब, अब इसमें राम गोपाल वर्मा साहब जो हैं उनको बड़ा प्यार हो गया है लॉरेंस बिश्नोई के साथ की, जो गैंगस्टर है। उन्होंने जनाब वो कह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर एक बायोपिक बनाना चाहता हूं। उन्होंने आज एक पिक्चर शेयर की है जिसके के अंदर उन्होंने ऑरेंज टी शर्ट पहना हुआ है और ब्लैक एंड ऑरेंज जो है वो उसने हुडी लगाया हुआ है। तो अपने एक्स के ऊपर उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि जब बड़ी बड़ी यहां पे गैंगस्टर की फिल्में बनती हैं तो कोई भी जो फिल्म मेकर है वो कोई भी लड़का कास्ट कर लेता है टू हु लुक्स लाइक दाऊद इब्राहिम या छोटा राजन। लेकिन ये बहुत बड़ी उन्होंने जी आज राम गोपाल वर्मा ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में मुझे एक भी इतना गुड लुकिंग लड़का नहीं नजर आ रहा कि वो लॉरेंस बिश्नोई का रोल अदा करे। उसके ऊपर तो फिर उनका जो एक्स था वो भर गया, फ्लडेड हो गया कमेंट से। उन्होंने कहा पायान आप अन्ने हुए हुए हो, आपको सलमान खान नहीं नजर आ रहे, सल्लू भाई को कास्ट करो इस रोल में, सल्लू भाई को बनाओ ये लॉरेंस बिश्नोई। और लोगों ने कहा ये तो बड़ी आयरनी होगी, वो लड़का जो सलमान को मारना चाहता है वही उसका रोल भी प्ले करे। बहरहाल इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। और जनाब विद्या बालन साहिबा जो है उनके लिए बड़ा फैन गर्ल मोमेंट रहा, केबीसी 16 का जो एक ट्रेलर एक एपिसोड का आया है उसके अंदर उसमें देखा जा रहा है कि ये अपनी जो फिल्म है भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन के साथ प्रमोट करने के लिए जो दिवाली पे आ रही है केबीसी 16 में आई, वहां पे इसने बिग बी के साथ जो है डांस किया, उनका जो आइकॉनिक ट्रैक था सत्ते पे सत्ता का, दिल भर मेरे कब तक मुझे यूं ही तड़पाओगे, और फिर दोनों ने स्माइल किया, डांस किया, और फिर उसके थोड़ी देर के बाद जो है कार्तिक आ गया, कार्तिक इनको सीट पे अपने बैठे देखता रहा। उसके बाद विद्या बालन ने बिग बी को बड़ा सारा हक दिया और अपनी सीट पे आके बैठी, और बिग बी जो है वो सुने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे मुझे तो जरा डांटना पड़ेगा मेकर्स को, मेरे से क्या क्या काम करवाते हैं मेरी नॉलेज के बगैर, मुझे पूछना पड़ेगा इनको। तो जो है वो ये एपिसोड जो है ये एयर की जाएगी अक्टूबर 18 को 9 PM पे सोनी टीवी के ऊपर। जनाब हो सकता है लायनल मेसी रिटायर कर जाएं, बड़ी ही 5-स्टार परफॉर्मेंस दी उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अर्जेंटीना के लिए विद अ मैसिव 6-0 विन ओवर बोलिविया, और अपने होम क्राउड के ब्यूनस आयर्स में इन्होंने सेंसेशनल हैट्रिक मारा इस मैच के अंदर, और ये इनका सेकेंड अपीयरेंस था अर्जेंटीना के लिए, क्योंकि अभी ये इंजरी से वापस आए हैं जो इनको मिली थी कोपा अमेरिका के फाइनल में अर्लियर दिस ईयर। और उन्होंने कहा जी कि अभी मैं कोई डेट सेट नहीं कर सकता अपनी फ्यूचर के लिए, डेडलाइन सेट नहीं कर सकता, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूं, बड़ा मैं इमोशनल हूं, लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि शायद ये मेरी कुछ लास्ट गेम्स हैं। तो इसलिए लोग समझ रहे हैं शायद ये जल्दी रिटायर हो जाएंगी है। और जनाब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ये हिंट किया है कि शायद पीसीबी एक हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर इंडिया पाकिस्तान के मैच कराएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, अगर इंडिया ने चूज किया कि वो पाकिस्तान ट्रेवल करके नहीं आना चाहता। ईसीबी के जो चेयर हैं रिचर्ड थॉमस थॉमसन, उन्होंने कहा है जी कि क्रिकेट के इंटरेस्ट के लिए ये बड़ा अच्छा नहीं है ये कि अगर इंडिया मैच के अंदर ना खेले जो पाकिस्तान में होने वाला है फरवरी में नेक्स्ट ईयर। इंडिया की पार्टिसिपेशन अभी तक अनसर्टन है और इंडिया 2008 से पाकिस्तान में नहीं आया है और बायलैटरल सीरीज दोनों के बीच में 2012-2013 से नहीं हुई है। थॉमसन ने कहा कि बीसीसीआई के चेयरमैन जय शॉ इसके ऊपर बड़ा मेन रोल प्ले करेंगे। एक होती है जियो पॉलिटिक्स और एक होती है क्रिकेटिंग जियो पॉलिटिक्स, तो मुझे लगता है कि दोनों टीमें कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगी। थॉमसन और ईसीबी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं रिचर्ड गूल्ड, वो आजकल पाकिस्तान में आए हुए, क्योंकि आपको पता ही है कि इंग्लैंड की टीम जो है यहां पे खेल रही है और ये ब्रिटिश मीडिया जो है उससे बात कर रहे थे मुल्तान के अंदर। उन्होंने कहा जी कि नेक्स्ट हमारी जो मीटिंग है वो दुबई में होने वाली आईसीसी की, तो उसके ऊपर बातें और ज्यादा आगे लेके जाएंगे। और जनाब इंग्लैंड को रैप किया डे टू के ऊपर सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान और 239/6 जिसमें कि बहुत रैपिडली आज इंग्लैंड की जो है विकेट्स गिरी इंक्लूडिंग बेन डकेट एट मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया और इंग्लैंड जो था 211/3 और 225/6 था। इसके अंदर जो लीड कर रहे थे वो डकेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने 100 रन बनाए यानी कि 114 ऑल टुगेदर उन्होंने बनाए जब उनको आउट किया गया। पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग जो थी एंड हुई थी 366 ऑल आउट पे। रूट जो है उसको डिसमिस किया साजिद खान ने 34/54 बॉल्स और स्पिनर जो है लैक लीच उन्होंने ली थी पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट्स फॉर 114 और जो उनके सीमर हैं ब्रेडन कॉर्स उन्होंने 3 विकेट्स ली फॉर 50। इंग्लैंड जो है वो 3 टेस्ट सीरीज 1-0 से लीड कर रहा है लेकिन आज पाकिस्तान के बॉलर साजिद ने खान ने कमाल कर दिया, उसने 86 रन के ऊपर 4 विकेट्स ली। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट बांग्लादेश हेड कोच चंद्रिका हथुरुसिंघा। कितना मुश्किल नाम है, 56 ईयर्स इनकी एज है। इनको सस्पेंड किया गया है फॉर डिसिप्लिन फॉर 48 आवर्स बाय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। ही कैन बी सैक्ड सून ऑल्सो। फॉर्मर वेस्ट इंडीज हेड कोच फिल सिमंस जो हैं उन्होंने अब इनकी जगह पे इंटरिम बेसिस पे चार्ज लिया है अंटिल नेक्स्ट ईयर्स चैंपियंस ट्रॉफी। बीसीबी के जो प्रेसिडेंट हैं फारूक अहमद, उन्होंने कहा जी कि इनके ऊपर 2 मिसकंडक्ट के चार्जेस हैं, एक तो जो है असॉल्ट ऑन प्लेयर और दूसरा जो है कि ये बहुत ज्यादा छुट्टियां लेते थे मोर देन इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था। और इन्होंने कोच किया था बांग्लादेश को 2014 से 2017 में और फिर इनका सेकंड स्टिंट जो है लास्ट ईयर जनवरी में शुरू हुआ था लेकिन लगता है कि अहमद साहब इसको कुछ पसंद नहीं करते। उन्होंने बड़ा एतराज किया था जब इनको अपॉइंट किया गया था और अब जब ये आए थे नए चीफ बन के तो उन्होंने आंदो सारी पहला काम है किया जी इसनू किया जी तुसी जाओ टाटा बाय बाय हैं जी। तो ये है जी हमारी आज की कहानियां और स्टोरियां,
ये थी हमारी खट्टी मीठी खबरें
कहानियां और स्टोरियां
विद साउंड इफेक्ट।
यस,
तो आई होप कि आप लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल बराबर हो गया होगा, शुगर भी कंट्रोल आ रही होगी और ब्लड प्रेशर तो सेट हो गया होगा, खैर और खैरियत के साथ आप अपने घर जा सके।
जी जी बिल्कुल
ठीक हो गया। हाँ। तो अब आप भी निकल लें।
हाँ नहीं इस तरह नहीं कहते, कहने पिन फूड़ी चुकोते निकलो।
अच्छा ये मुझे ट्रांसलेट करनी पड़ेगी इसके लिए,
यानी कि अपने आप को उठाओ और अपना बिस्तरा उठाओ और यहाँ से जाओ, तो टिंड आपकी जो है ना यानी कि अपना सिर यानी कि अपने आप को उठाओ
और
जो आप बिस्तरा जो बना के बैठे हो ना यहाँ पे बिस्तरों के बैठे वो लेके निकलो।
चले जी आप जो है बहुत शुक्रिया आपका,
थैंक यू
हमारे साथ जुड़ने का। वो टिंड उठाओ बढ़िया से उठाओ निकल लो, वही वाली। तो चले जी इंशाल्लाह जो है वो जिंदगी रही और आप जिंदा रहें
yes.
तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए आप हमें कम से कम इजाजत
जान छोड़ो।
ठीक है जी, तमाम सामईन का और नाजरीन का बहुत शुक्रिया जो हमें 770 AM डायल पर सामईन हमें सुन रहे हैं और ये आवाज टीवी पर देख रहे हैं, आप सबका भी हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अब दुआ का सेगमेंट बस स्टार्ट होने लगा है तो अब इजाजत दीजिए पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, आरफा मुजफ्फर साहिबा की तरफ से, माजी जवान साहब की तरफ से और हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से, मैं आपका होस्ट आमिर अहमद अब इजाजत लूंगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
मैं उन बेकरम की घर करम मांगता हूँ WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाकर हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। Radio 770 AM, Voice of Community. For more details, visit eawaz.com.
चलिए तुम किथे चलिए तुम किथे चलिए जानदार दिल ये तो जान दिया तू तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू किथे चलिए तुम किथे चलिए तुम किथे चलिए काटू कैसे राता तू सावरे जिया नहीं जाता सुन बावरे के राता संगे आ रे तेरा लंबे लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे।
संगे आ रे तेरा साल लंबे लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ संगे आ रे चलिए काटू कैसे राता तो सावरे जिया नहीं जाता सुन बावरे के राता लंबे आए कटे तेरे संगे आए के राता लंबे आए कटे तेरे संगे आए
वालों से अल्लाह बचाए, वालों से नजरों से अल्लाह बचाए, इश्क वालों को अल्लाह बचाए, नजरों से अल्लाह बचाए, हाँ इश्क वालों को अल्लाह बचाए, इश्क वालों को अल्लाह बचाए, इश्क वालों को अल्लाह बचाए,
रांझो से उनकी ही
तुझे मुझसे बढ़कर चाहने लगा, जिसके लिए तू हाथ मेरा एक पल में छोड़ के जाने लगा। कौन है वो दुनिया में जो तुझे मुझसे बढ़कर चाहने लगा, जिसके लिए तू हाथ मेरा एक पल में छोड़ के जाने लगा। तू सोच समझ कर चाहो है, वो सच में कर सकता है क्या मेरी तरह, वो तुझ पर हंस के मर सकता है क्या, वो जो भी कहता है वो सच में कर सकता है क्या मेरी तरह, वो तुझ पर हंस के मर सकता है, हंस के मर सकता है। फर्क होता है यूं साथ मुस्कुराने में, हाथ थामने में और जिंदगी बिताने में। जीने मरने की बातें करके भूल जाते हैं, क्या किसी का जाए झूठे ख्वाब सा दिखाने में। तुम गलियों में अपनी कहता है वो सच में कर सकता है क्या मेरी तरह, वो तुझ पर हंस के मर सकता है क्या, वो जो भी कहता है वो सच में कर सकता है क्या मेरी तरह, वो तुझ पर हंस के मर सकता है।
को भिगाया है रिमझिम ये सावन फिर बरसातें ले आया है